नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। जापान की दो दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO बैठक में भाग लेने के लिए चीन रवाना हुए। कहा, आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर से मुलाकात की और उनसे भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि दर की सराहना की। कहा, भारत सुधारों और लचीलेपन से प्रेरित दुनिया के विकास का माध्यम है। जम्मू में भूस्खलन की दो अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया और पंजाब के कई जिलों में आई बाढ़ के बीच राहत और बचाव कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की सफल यात्रा के बाद आज चीन के लिए रवाना हो गए। चीन में श्री मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दोपहर बाद तियानजिन पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कल से शुरू होकर दो दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रेक्षक देशों और साझेदार संगठनों के नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी संपर्क, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस मंच पर भारत की सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीय संवाद को सशक्त बनाने और साझा विकास की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन।
SCO शिखर सम्मेलन में संगठन के 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी और 10 वर्षीय विकास रणनीति भी अपनाई जाएगी। चीन 5वीं बार SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग SCO सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी करने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले जापान यात्रा के पहले दिन 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद श्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा शिकानसेन बुलेट ट्रेन के मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। उन्होंने सेमीकंडक्टर उत्पादन के प्रमुख निर्माता टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा किया। कल वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी और श्री इशिबा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि यात्रा भारत जापान साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अगले दशक में दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए एक साहसिक रणनीतिक खाका पेश किया, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में दूरगामी समझौते शामिल हैं। इनमें अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन पेश किया गया, जिसमें 10 वर्षों के लिए आर्थिक साझेदारी और सुरक्षा, पारिस्थितिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वास्थ्य समेत कुल 8 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। जापान ने अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन निजी निवेश की महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा की है। दोनों पक्षों ने एक व्यापक आर्थिक सुरक्षा पहल भी शुरू की। इसके अलावा मानव संसाधन के आदान प्रदान के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी मिली, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5,00,000 लोगों की आवाजाही समेत जापान में 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय श्रमिकों को भेजना है। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 5 मिशन को लेकर इसरो और जाक्सा के बीच एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहयोग ज्ञापन, भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 पर समझौता ज्ञापन और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा अमोनिया पर संयुक्त आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया गया। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व और प्रगति की एक शर्त है। आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिहाई में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की 4थी तिमाही में GDP में 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की 1ली तिमाही में ये 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 1ली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल GDP में 8.8% की वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं।
हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है GDP विश्व भर में 30वें स्थान पे आएगी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास केंद्र है।
भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में, कि यूरोपियन यूनियन हो, FTA का सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है, वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश FTA में एक साथ आ जाए। पूरी दुनिया आज आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत के निर्णायक नेतृत्व में है, ये जादू आप सबके सामर्थ्य में, आपकी काबिलियत में है, ये जादू आप सबकी मेहनत और पसीने में है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है।
नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर राज्य विधानसभाओं की समितियां गठित करने का आह्वान किया जहां अब तक ऐसी समितियां गठित नहीं की गई हैं। आज भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में श्री बिड़ला ने कहा कि इन संसदीय समितियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ऐसी समितियों की सिफारिश करनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना।
अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया?
बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा।
अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है।
जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें।
चिकनगुनिया से ना घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में पिछले 12 घंटों के दौरान जम्मू संभाग के रामबन और रियासी जिलों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद है।
आज तड़के रियासी जिले के बादर गांव में भारी बरखा के कारण हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। रामबन जिले की द्रुपदा गांव में आज बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य लापता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार 5वें दिन भी बंद है। सड़क बहाली कार्य की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है, जिसमें उपराज्यपाल भी शामिल हैं। इस बीच जम्मू जिले के अधिकांश शहरी इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबन, रियासी और उधमपुर के कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बिजली नहीं है। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा लगातार
इस बीच रेलवे ने आज जम्मू तवी से दो विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां दोपहर 3 बजे महू के लिए और शाम 5 बजे छपरा के लिए चलाई जाएंगी। किसी भी सहायता के लिए यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन के हेल्पलाइन 0191295531 पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाब में पहाड़ी इलाकों से पानी का भारी प्रवाह राज्य के लिए मुसीबत बन गया है। रावी नदी में अब तक 14.11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ चुका है, इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अलग अलग स्थानों के लिए तथा कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 6 पैदल यात्रियों की मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना आज सुबह बीड़ तालुका के धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। बीड़ और शिदोद गांव के रहने वाले लोग पेड़ गांव के हनुमान मंदिर जा रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने खेलों के लिए अपनी नीतिगत प्राथमिकता और सार्वजनिक निवेश बढ़ाया है। नई दिल्ली में पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को मंजूरी देने पर जोर दिया। ये खेल संघों और निकायों के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव लाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे एशिया कप में भाग लेने के लिए आज चीन के ह्वांगझू रवाना होगी। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने महिला हॉकी एशिया कप 2004 और 2017 में 2 बार जीता है। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत अमरीकी ओपन टेनिस के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने अमरीका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को हराया। दूसरे दौर में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ और ब्राजील के फर्नांडो रोम्बेली से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अगले महीने लंदन में होने वाले एक बड़े रक्षा प्रदर्शनी में इसराइल के अधिकारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह फैसला लिया गया। इस बीच इसराइल ने घोषणा की है कि वो लंदन में रक्षा प्रदर्शनी में शामिल नहीं होगा। तुर्की ने इसराइल के सरकारी विमानों और सेना के हथियारों के किसी भी साजो सामान के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है और साथ ही अपने बंदरगाहों को इसराइल और किसी तीसरे देश के बीच समुद्री व्यापार के लिए भी बंद कर दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान की यह घोषणा पिछले साल मई में तुर्की और इसराइल के बीच सीधे व्यापार पर प्रतिबंध के बाद आई है। इसराइल ने इस घोषणा पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। बांग्लादेश में ढाका के ककरेल में कल शाम 2 राजनीतिक दलों जातीय पार्टी जापा और गोनो अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई। इससे इलाके में अशांति फैल गई और कई लोग घायल हो गए। स्थिति को काबू करने के लिए सेना और पुलिस बल को तैनात किया गया। केरल में अमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में आज एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। ये एक गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है जो ताजे पानी में पाए जाने वाले मुक्त जीवित अमीबा के कारण होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO बैठक में भाग लेने के लिए चीन रवाना हुए। कहा आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर से मुलाकात की और उनसे भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि दर की सराहना की। कहा भारत सुधारों और लचीलेपन से प्रेरित दुनिया के विकास का माध्यम है। जम्मू में भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।